ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और हाल ही में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फेडरल सरकार ने आकस्मिक श्रमिकों के लिए अपने $750 महामारी भुगतान को फिर से शुरू कर देने का फैसला लिया है। इस मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार पर दबाव पड़ रहा था। आकस्मिक श्रमिकों के लिए महामारी की छुट्टी भुगतान यानी पेंडेमिक लीव पेमेंट्स को समाप्त करने के विषय पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ, राज्य सरकारें, संघ और कार्यकर्ता सभी ने चिंता जताई है और इसी के चलते प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने घोषणा की कि इस भुगतान को फिर से बहाल किया जाएगा।
I said during the election campaign repeatedly that one of my themes was no one left behind. And indeed I want to make sure that people aren't left behind, that vulnerable people are looked after and that no one is faced with the unenviable choice of not being able to isolate properly without losing an income.
$750 का भुगतान उन आकस्मिक श्रमिकों के लिए है जिन्हें कोविड की वजह से अलगाव में रहना पड़ता है और जो सिक लीव के हकदार नहीं हैं। ये उन लोगों को काम पर जाने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है जो वायरस ग्रस्त हैं मगर अलगाव में रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। पिछली गठबंधन सरकार द्वारा जून के अंत में भुगतान को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और वहीं लेबर पार्टी का कहना है कि फेडरल बजट इस तरह के आपातकालीन भुगतानों को हमेशा के लिए समर्थन नहीं दे सकता। मगर एंथनी अल्बनीजी अब कहते हैं कि नीति का पलटना मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त नवीनतम सलाह पर आधारित है।
I think it's a big call to say that I haven't acted quickly. What we've seen with this new wave of B4 B5 is a changed health circumstance, and when the health circumstances change, we've responded. We've responded collectively, together, the Commonwealth, with states and territories, and that's appropriate.
Pandemic leave payment योजना को 20 जुलाई से फिर से शुरू किया जाएगा और यह योजना 30 सितंबर तक चलेगी। दो सप्ताह पहले समाप्त होने वाली इस योजना को 1 जुलाई को भी वापस दिनांकित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कॉमनवेल्थ, राज्य और टेरिटरीज इस योजना की 780 मिलियन की लागत को विभाजित करेंगे। देश के चिकित्सा संस्था ने इस फैसले की तारीफ की है। डॉक्टर उमर खुर्शीद ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वो कहते हैं,
We need the COVID supports in place so that Australians can do the right thing and they're not put in a situation of having to balance up whether to do the right thing but not put food on the table or in fact go to work, pretend they haven't got COVID, pretend it's a cold or a flu and actually put their co-workers at risk.
यूनियनों ने और व्यापारिक समूहों ने भी इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष ने आलोचना करते हुए कहा कि यह बहुत कम और बहुत देर से हुआ है। हालांकि यह विपक्ष की सरकार थी जिसने पिछले सितंबर में 30 जून को इस योजना की समाप्ति स्थिति निर्धारित की थी। उप विपक्षी नेता सूजन ले ने एबीसी को बताया कि सरकार के पास हफ्तों पहले स्वास्थ्य सलाह थी मगर फिर भी आकस्मिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वे कार्य करने में विफल रही।
Putting them in this impossible position is unacceptable and Anthony Albanese needs to apologize to every casual worker who has suffered stress as a result of this flip-flopping. I mean, he has failed this first test of managing a pandemic as a Labor government.
सिडनी के भीतरी पश्चिम क्षेत्र में रेस्टोरेंट के मालिक रेथ हॉक का कहना है कि कोविड ने उनके व्यवसाय को पीछे धकेल दिया है, मगर इस भुगतान से उन्हें और उनके कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
That's really mean a lot. That have through us and have through the staff for the financial support, and that's money will we have people to go through in this tough situation. It helps you capture staff that need to be isolated. And now at the moment we really struggle as well with the short staff. And I believe everywhere in Australia that have the same problem.
सरकार गंभीर वित्तीय कठिनाई वाले लोगों के लिए संकट भुगतान यानी क्राइसिस पेमेंट को फिर से शुरू करेगी, लेकिन व्यापक मांगों के बावजूद यह रियायत कार्ड धारकों के लिए मुफ्त रैपिड एंटीजन परीक्षण का विस्तार नहीं करेगा। एंथनी अल्बनीजी का कहना है, आरटीए पहले से ही पूरे देश में व्यापक रूप से उपलब्ध है।
They've been provided through aged care centers, they've been provided anywhere where you can go get a PCR, you can rock up there today and pick up a RAT test. There is no shortage of RAT tests in Australia and the Commonwealth has paid for half of every one of them.
सकारात्मक परीक्षण देने वाले लोगों के लिए एक नया अस्थायी टेलीहेल्थ आइटम बनाया जाएगा जिसमें जीपी के साथ लंबे समय तक परामर्श और एंटीवायरल उपचार जैसी आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं। डॉक्टर्स रिफॉर्म सोसाइटी से डॉक्टर रॉबर्ट मार कहते हैं
I've had quite a few patients with COVID request the antivirals and they are quite complex because one of them particularly interacts with a lot of other medications so it takes quite a long while to explain to patients that they have to stop taking certain other medications.
राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी सहमति व्यक्त की कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार लोगों को उन जगहों पे मास्क पहनने पर जोर देगा जहां एक दूसरे से दूरी बनाना संभव नहीं है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे जरूरी बताया है, मगर नेताओं ने मास्क अनिवार्य करना समाप्त कर दिया है। एपिडेमियोलॉजिस्ट एड्रिन एस्टरमैन का कहना है कि मैसेजिंग में सुधार की जरूरत है, खासकर बहुसांस्कृतिक समुदाय के लिए।
My preference would be for face mask mandates, but if the various state and territory governments and national cabinet don't agree with that, the least they could do is to have much better messaging to the general public about why face masks are so important. That messaging simply isn't happening at the moment.
Queensland Premier Anastasia Palaszczuk पहले से ही इस पर काम कर रही हैं.
Please, you are strongly encouraged to wear your masks indoors. I'll be wearing my mask indoors, and I'm encouraging people to do that as well. We are seeing the escalation of people going into our hospitals. Today, tragically in Queensland, we have 22 deaths, and we expect this wave to go on until even the end of August. So the one thing we can do in winter to protect ourselves and others and those close to us is to wear a mask indoors.
पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस संक्रमण जारी है और देश भर में 3 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं और 4,700 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। अकेले विक्टोरिया में वायरस से 64,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और 800 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। क्वींसलैंड में 900 से अधिक लोग और न्यू साउथ वेल्स राज्य में 2,000 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। SBS न्यूज की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।